अगला चैप्टर देखेंगे।
फ़ज़लो सौम, रोज़े की फजीलत। रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इसकी दलील हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। आप कहेंगे कि दरवाजे तो बंद हो जाते हैं, शैतान तो बंद हो गए तो फिर भी गुनाह क्यों होते हैं? अक्सर सवाल आता है ना। इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगी। आपका बच्चा किसी ऐसे बिगड़े हुए बच्चे के साथ कुछ दिन गुजार ले, कोई आपके घर में ही कोई बच्चा आ गया, मेहमान आ गया, कहीं बच्चा चला गया, किसी बिगड़े हुए बच्चे के साथ रहा, नतीजा क्या हुआ? उसका भी मिजाज बिगड़ जाता है। आप कहते हैं इसकी तो आते बदल रही हैं, ऐसे तो कभी नहीं बोलता था, ऐसे तो कभी नहीं करता था। खैर, फिर क्या होता है कि वो शख्स चला जाता है, बच्चा दूसरा जो होता है छुट्टियाँ गुजार के, उसके जाने के बाद भी आपके बच्चे पे कुछ ना कुछ असर रहता है। जब तक आप फिर उसको बाद में टोकते नहीं, रोकते नहीं, वो वैसे ही करता है। यही हाल इंसान के नफ्स का है। शैतान जब इसके साथ खेलता है ना, तो शैतान खुद चला भी जाए तो कुछ ना कुछ असर इसके नफ्स पे रहता है। और वैसे भी हर इंसान के अपने अंदर भी तो एक शैतान है जो उसको बदी का हुक्म देता है, तो बाहर के शैतान बंद होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर के शैतान बंद करने की ज़रूरत है। और रमज़ान यही पैगाम देता है कि अल्लाह ने बाहर के बड़े शैतानों को बंद किया है, तुम इस अंदर के इस शैतान को बंद करो जो हमेशा बुराई का हुक्म देता है, जिसका तज़किरा सूरह यूसुफ में भी आता है कि वमा उबर्रियु नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि मैं अपने नफ्स को पाक नहीं कहता क्योंकि नफ्स तो हमेशा ही बुराई का हुक्म देता है। अगली बात, रमज़ान में उमरे का सवाब हज के बराबर मिलता है। दलील हज़रत अता रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की एक औरत उम्मे सनान से फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने इस औरत का नाम भी लिया मगर मैं भूल गया, तुम हमारे साथ हज पर क्यों नहीं चलती? औरत ने अर्ज़ किया, हमारे पास सिर्फ दो ऊँट थे, एक पर मेरा शौहर और बेटा दोनों हज के लिए गए, अब एक ऊँट घर में है जिस पर हम पानी वगैरह लाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अच्छा जब रमज़ान आए तो उम्रा कर लेना, इसका सवाब भी हज के बराबर है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। सवाब तो जो है हज के बराबर, लेकिन जो मज़ा आता है रमज़ान के उम्रे का, वो भी एक अल्लाह ताला की निशानियों में से निशानी है। इसका ये मतलब है कि अगर रमज़ान में उम्रा कर लें तो फिर हज का फ़र्ज़ साकित हो जाता है? नहीं, लफ्ज़ों पे गौर करें, सवाब हज के बराबर है। ये नहीं कहा कि रमज़ान में उम्रा कर लो तो हज साकित हो गया। हमारे यहाँ अमूमन इस तरह के शॉर्टकट्स को फिर बुनियाद बना के फ़राइज़ से पीछे हटा जाता है। यहाँ एक और मुगालता दूर करना चाहूँगी कि बास लोगों को उम्रे का बहुत शौक़ होता है, पैसे जमा कर करके उम्रा करते हैं, और कई फिर बहुत एक उम्रे के बाद फिर उम्रा करते हैं, हज नहीं करते। एक छोटी सी बात जहन में रखने की है कि अगर इंसान के पास बहुत नपा तुला रिस्क भी है और उसको शौक भी है, तो उसको फिर हत्तुल वसा कोशिश करके हज कर लेना चाहिए। उम्रा कर लिया ये सुन्नत थी, लेकिन हज करना फ़र्ज़ है। अगर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो उम्रे पे उम्रा करने के बजाय अगर एक दफ़ा हज कर लिया जाए, फिर उसके बाद इंसान को जितनी भी तौफीक मिल सके फिर उतने उम्रे बाद में भी हो सकते हैं। रोज़ा क़्यामत के दिन रोज़ेदार की शिफात करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर से रिवायत है रदी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी ने फरमाया, रोज़ा और कुरान क़्यामत के दिन बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को खाने पीने और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने से रोका, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को रात क़याम के लिए सोने से रोके रखा, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। चुनाचे दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। इसे अहमद और तबरानी ने रिवायत किया। अल्लाह अकबर, दुनिया में इंसान सिफारिश की कितनी ख्वाहिश रखता है और कभी जायज़ और कभी नाजायज़ तरीक़ों से सिफारिश करने और कराने की कोशिश करता है, लेकिन क़्यामत के दिन अल्लाह ताला कुरान और रोज़े की सिफारिश करवाएंगे। अब आप सोचिए कि अगर हमने इन कामों के करने में कोई ऐसी कमी की हुई कि जिससे हक अदा ना हो, तो आप बताइए कि क्या फिर वो सिफारिश करेंगे या हमारे खिलाफ बात करेंगे? और वो लोग जो कुरान के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते, या जिनके रोज़े बस ऐसे रोज़े हैं कि कभी रखा और कभी नहीं रखा, तो फिर वो इस सिफारिश से महरूम हो जाएंगे। तो हमारे दिल में इस चीज़ की पूरी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम रोज़ों को इस सोच के साथ भी रखें कि कल इस रोज़े ने मेरे हक में सिफारिश करनी है। रोज़े का अजर बेहिसाब है, बड़ी प्यारी रिवायत है। इसको सुनते वक्त वाकई अल्लाह के नबी से मोहब्बत महसूस करें कि जिनके नाते से हमें इतनी प्यारी रिवायत जो हदीसे कुदसी है। अल्लाह ही का कलाम होता है लेकिन अल्लाह के नबी की ज़ुबान से हम तक पहुँचता है, ऐसी रिवायतों को हदीसे कुदसी कहते हैं। ये उन्हीं में से एक है। क्या हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाता है कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा, और रोज़ा आग से ढाल है। लिहाजा जिस रोज़ तुम में से किसी का रोज़ा हो, इस रोज़ वो फुखश गोई ना करे और बेहुदा कलामी ना करे, और अगर कोई दूसरा इससे गाली गलौज करे या लड़ाई करे तो रोज़ेदार को सिर्फ इतना कहना चाहिए कि मैं रोज़ेदार हूँ। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ेदार के मुंह की खुशबू क़यामत के दिन अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा होगी। रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं जिनसे वो फ़रहत हासिल करेगा। अव्वलन, जब वो रोज़ा इफ्तार करता है तो खुश होता है, और दूसरी बात, जब वो अपने रब से मिलेगा और रोज़े के बदले में अपने रब से इनाम पाएगा तो खुश होगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। इससे क्या पता चलता है कि रोज़े का अजर इतना ज़्यादा है कि अल्लाह ताला कहते हैं इसको मैं खुद ही दूंगा। एक तो इसमें अजर की कसरत की तरफ इशारा है, और दूसरा इसमें अल्लाह के साथ ताल्लुक की तरफ इशारा है। आप देखिए कि किसी को भी कुछ देते हैं तो दे देते हैं, लेकिन किसी को ख़ास कुछ देना होना तब कहते हैं इसको मैं खुद ही दूंगा, बस इसका मामला मेरे नाम पर डाल दो, इससे मैं खुद ही निबट लूंगा। अल्लाह की ज़ात अपने बंदे के एक अमल को, उसकी सवाब को, उसके अजर को अपनी तरफ ले, तो सोचिए कि एक बंदे की कितनी खुशकिस्मती होगी। फिर आप देखिए कि रोज़ेदार के उनसे बात आती है ना, आनी नहीं चाहिए। इसके लिए आप एहतमाम कर सकते हैं अपने मिसवाक का, और कसरत से अगर आप जैसे कुली करते हैं तो ज़रा मुबालगे के साथ अच्छी तरह करें। लेकिन जब भी इंसान बहुत देर तक कुछ नहीं कहता बोलता तो बदबू आती है। अब ये ना कहें कि हम अल्लाह को, चूंकि उससे खुशबू से मतलब अच्छी लगती है तो इंसानों को भी आएगी, ऐसा ना करें। कभी रोज़ा हो या कभी बहुत अरसे से कुछ ना खाया हो तो किसी से बात करते हुए थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखा जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा बात करते हुए हमारा स्मेल या हमारी सांस की जो स्मेल होती है वो दूसरों को तकलीफ़ देती है, और बाज़ दफ़ा बाज़ लोग बात करते हुए इतना करीब हो जाते हैं एक दूसरे के कि उससे भी ये बैड फीलिंग्स आने लगती हैं। तो ये छोटे छोटे मैनर्स जो होते हैं ये इंसान को फिर दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल बर्दाश्त बना देते हैं अगर इनका ख्याल रखा जाए। लेकिन बहरहाल अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं, उसको तो हर उस चीज़ से खुशी होती है जो बंदा उसके रास्ते में तकलीफ़ उठाए, और ये असल में मोहब्बत की बात है। अल्लाह ताला बंदे को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। फिर अगली बात देखिए कि इस रोज़े में फुखश गोई और बदकलामी और गाली गलौज की बात है, तो रोज़े के बावजूद भी अगर हमारे से ऐसे कोई काम हो जाते हैं तो पहली तो बात यह है कि उसका फ़ौरन तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। दूसरी एक चीज़ इंशाल्लाह इसी किताब के आखिरी बाब में हम पढ़ेंगे कि रमज़ान के रोज़े के बाद फिर एक ऐसी अल्लाह ताला ने इबादत रखवा दी कि जिससे रोज़े की हालत में हुई ख़ताएँ और छोटे छोटे गुनाह या बड़े जो हैं अल्लाह ताला उसको माफ़ करवा देते हैं, जो इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे इसी के आखिर में। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी इबादत करें तो उसके साथ उसकी स्पिरिचुअलिटी को महसूस करें। अब यहाँ हमने इफ्तारी की बात देखी तो उस वक्त याद किया करें कि अच्छा जब मैंने रोज़ा खोला तो मुझे कितनी खुशी हुई है, तो वो कैसा दिन होगा कि जब मैं अपने रब को मिलूँगा। और इस कुरान पाक की एक आयत है कि जन्नत में जब जन्नती जाएंगे तो उनको कहा जाएगा, फ़कुलू वशरबू हनीयम बीमा असलफ तुम फिलैया मिल खालिया। गालिबन सूरत चेक किया जा सकता है कौन सी आयत है, मारिच है या बुरूज, यानी ये बीच की सूरतों में से है, कि उनको कहा जाएगा खाओ और पियो उन मेहनतों के बदले में जो तुमने पिछली ज़िंदगी में की। तो मुफसरीन कहते हैं कि यहाँ मुराद है रोज़ों के बदले, कि जो बंदा दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए रोज़ा रखता है कल जन्नत में अल्लाह ताला उनको कहेगा कुलू वशरबू, खाओ और पियो हनीयन जितना चाहो, क्योंकि तुमने जो पिछले दिनों में मेहनत की। और दुनिया में आप देखिए कि हम किसी के लिए भूख प्यास बर्दाश्त करें तो उसको खुशी होती, आपकी खातिर कोई सारा दिन ज़रा इधर उधर फिरता रहे, दफ्तरों के चक्कर लगाए, पता चले कि उसने खाना भी नहीं खाया, तो आप उसके लिए कैसी फीलिंग्स रखते हैं, कहते हैं हाय मेरे लिए भूखे, पहले खाना खाएं, बैठे पहले खाना खाएं। तो जब एक बंदा अल्लाह के लिए भूखा रहता है तो अल्लाह को उससे कितनी मोहब्बत आती होगी। روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جسے قیامت کے دن روزے دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اب کون گزریں گے؟ ایک تو روزے رکھنے والے اور دوسرے کثرت سے نفلی روزے رکھنے والے، کیونکہ فرض تو سارے ہی رکھتے ہیں، تو رکھنے تو چاہیے ہی، جو نہیں رکھتے پھر ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن اس نیت سے بھی نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں باب ریان میں سے داخل کرنا۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ خوشی ہوئی سن کے؟ ہم نے چند راتیں رکھی ہوئی ہیں سال میں، ایک یا دو راتیں، اس رات یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نجات دیتے ہیں۔ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ یہ لفظ اگر آپ عربک میں سے ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو بڑے خوبصورت لفظ ہیں۔ وہ کیا پکارتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر۔ اور دوسری پکار کیا آتی ہے؟ یا باغی الشر اقصر، اے شر کے چاہنے والے رک جا رک جا۔ اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ آپ کے لیے ایکٹیویٹی کیا ہے کہ یہ جو لفظ صرف اتنے بیچ میں تھے نا، خیر کی طرف آنے والے جلدی کرو، اس کا عربک اور ساتھ ہی نیچے اردو یا اپنی لینگویج میں لکھ کے، تو آپ اس کو اپنے گھر میں اس رمضان کے آنے پر ہر چھوٹی چھوٹی جگہ پہ چپکا دیں، یعنی جہاں بھی آپ کی کثرت سے نظر پڑتی ہے، آپ کا کمپیوٹر اسکرین ہے، آپ کمپیوٹر اسکرین پہ لگا دیں، فریج پہ لگا دیں، پھر آپ اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ لگا دیں، اور اس کو دیکھنے سے آپ کو جوش آئے گا۔ کبھی آپ کمپیوٹر پہ ٹائم ویسٹ کرنے لگیں گے نا، تو آپ کی نگاہیں پڑیں گی کہ خیر کے چاہنے لے جلدی کر، دیکھیں وقت کم ہے نا۔ اب آج کل ہم یہ جو کورس کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا بہت اچھا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہمیں فیل ہو رہا ہے نا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ایک ایک منٹ کا ہم استعمال کریں، اور کوئی ایسی بات جس کے بغیر گزارا ہوتا ہے وہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح رمضان کو بھی اگر اسی کیفیت سے ہم محسوس کریں تو بہت زیادہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ ایک ایک منٹ ضائع نہیں کریں گے، فون کال آپ فالتو اٹینڈ نہیں کریں گے، وقت بڑا قیمتی ہے، چلا جائے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ نے ایک ایک کے بدلے 70-70 نیکیاں جمع کرنی ہے، تو خیر کو چاہنا ہے، برائی شر اس سے رکنا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم ایک مہینہ اس کی پریکٹس کریں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کے بعد پھر باقی وقتوں میں بھی ہم اپنے وقت کی بہترین قدر کریں گے۔ اگلی بات، روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان میں صیام اور قیام کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ اسے بزار اور ابن خزیمہ نے نقل کیا۔ دیکھیے کہ شہید ہونا کتنے بڑے آنر کی بات ہے، لیکن کون؟ روزہ رکھنے والا اور قیام کرنے والا۔ اب جو نیکیاں عموماً کرتے ہیں نا، ہم اس کی کوئی اتنی قدر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، ہوگی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور دور دور کی نیکیوں کے لیے بڑی خواہشیں رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی نماز، روزہ اور ان عبادات کو صحیح طریقے سے کرنے لگ جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو شہداء کا ثواب ملے گا اور صدیقین میں ساتھ ہوگا۔ بعض دفعہ دیکھیے کہ جو نیکی ہماری اپروچ میں ہوتی ہے نا، ہمارے رینج میں، ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم اس کو اتنا نہیں سمجھتے، ہاں ٹھیک ہے یہ ہے۔ اور وہی حال آج ہماری نمازوں کا ہے، وہی حال آج ہماری عبادات کا ہے۔ ہم خانہ کعبہ جانے کے لیے بڑی تمنائیں کرتے ہیں، ہم مدینہ جانے کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن یہاں ہم نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھتے، یہاں ہم فرض بھی نہیں پڑھتے، وہاں ہم نفلوں کی بات کرتے ہیں۔ تو ایک شخص، ایک موقع پہ ایسا ہوا، ایک بہت صحیح روایت ہے اور اس کا خلاصہ ہے، کہ دو لوگ اکٹھے مسلمان ہوئے ایک ہی ساتھ، پھر دین سیکھا، پھر عمل کرتے رہے، اور ظاہر ہے ان کے دین میں عمل میں کم از کم بیسک تو سب کے سیم ہوتے تھے. کیا ہوا کہ ان میں سے ایک شخص شہید ہو گیا، شہادت کی موت مرا، اور دوسرا شخص ایک روایت میں آتا ہے اس کے ایک ہفتے کے بعد طبعی موت مرا، جیسے لوگ مرتے ہیں. کسی ایک دوسرے میں آتا ہے کہ ایک سال کے بعد اس کا انتقال ہوا. کسی دوسرے صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جو شخص بعد میں طبعی موت مرا ہے وہ شہید ہونے والے شخص سے پہلے جنت میں داخل ہوا ہے. تو وہ بہت حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ، ہم تو سوچتے ہیں، یعنی اس کے ذہن میں سوال یہ تھا کہ شہید کا درجہ تو زیادہ ہوتا ہے، تو کیا پھر یہ بعد والا پہلے کیوں جنت میں چلا گیا ہے؟ تو کہا کہ اس کے شہید ہونے کے بعد سے لے کے جو وقت اس نے گزارا، جس میں نمازیں اور روزے، جو اس نے اپنے فرائض ادا کیے، اس نے اس کا درجہ تو وہ بڑھا دیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور وہ نیکیاں کرے. ہر دن ایک ہمارے لیے غنیمت ہے. یہ پانچ نمازیں ہمارے نام اعمال کو بھاری کرتی ہیں. اگر ہم کل مر چکے ہوتے تو آج کی فجر ہمارے نصیب میں نہ ہوتی. فجر نصیب میں نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا؟ کہ پھر ہم اس کے بدلے میں وہ نیکی نہیں کر پاتے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں. اس لیے ہر دن کو اہم سمجھیں. کوئی پتہ نہیں، موت اتنی قریب ہے، بندے کی جوتی کے تسمے کے بھی قریب ہے. اس لیے جو وقت ملے اس کو نیکیوں میں خرچ کریں، تاکہ بہترین طریقے سے پھر ہم اپنی عبادات کو کر سکیں، اور کل ہمارے درجے اللہ کے پاس زیادہ ہو سکیں. آمین.